सदितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावसुन्धराय कृष्णप्रेमप्रदाय गुरवे गौरशङ्कराय राध्याय भक्ताय सर्वभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तं ते समेतवृत्ते द्वैपायनो सवैवास्मि सवैवास्मि विश्वामित्रयाभिनः कल देवी जी की नौमी की पूजा हुई। आज रावण का पुतला जल रहा होगा या जलाया जाएगा, सब जितने लीलाएं हो रही हैं के बाद में कल्पक में भरत मिलाप भी दिखलाया जाएगा। किंतु देवी की पूजा यहाँ कैसे आ गई, विजय दशहरा से उसका क्या संबंध है, अथवा रामचंद्र जी के जन्म के समय में भी नवरात्र होती है, इसमें देवी जी कैसे आ गई, इसका कोई इतिहास पुराणों में शास्त्रों में नहीं है। आज ही के दिन, वैसे दशहरा आज और कल दो दिन होगा, आज के दशहरा में नौमी मिली हुई है, इसलिए संत लोग आज को नहीं मनाएंगे। साधु संतों में जो वैष्णव हैं और जो अद्वैतवादी संत हैं, आज के तो दुर्गा पूजा तो कल से ही समाप्त, आज के भाषण पर भी
नहीं, आज के नवमी पूजा है।
आज नवमी है, नवमी सवेरे में जब सूर्य उदित हुआ, इसलिए सूर्य उदय के समय में जो तिथि होती है उसको पूरा तिथि मान लें, इसलिए आज नवमी थी सूर्य के उदय के सामने, इसलिए उसको नवमी ही मानना चाहिए। तो अभी कर रहे हैं दसवीं आज मान करके, ये सब लोग कर रहे हैं। तो यदि दसवीं भी माना जाए या आज भी दसवीं, तो आज के दिन देवी से क्या संबंध है इस पर विचार करना है, और राम की लीला में भी इसका क्या स्थान है ये भी देख लेते हैं। तो देवी से नौ दुर्गा जो कहलाती है, रामचंद्र जी के इस लीला से कोई भी संपर्क नहीं है। बंगाल में पहले वाल्मीकि रामायण इत्यादि चलता था, किंतु सब लोग, साधारण लोग इसको नहीं समझ पाते थे। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में उसका, उसमें भी कोई अनुवाद नहीं था, अनुवाद भी था तो प्रचलित नहीं था। उनमें से कोई एक थे देवी की पूजा करने वाले, क्या नाम था, ओझा, वो था तो इधर ही था किंतु बंगाल में बस गया है।
बिहार
का था मैंने दरभंगा का ही
था
वो बोलो दरभंगा शहर से बंगाल निकट पड़ता है इसलिए वहां जाकर की शक्ति की पूजा आरम्भ करें। उसने देखा कि हम तो शक्ति की पूजा करते हैं किंतु बंगाल में लोग शक्ति की पूजा नहीं करते, वो तो राम सीता का या राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, तो ये कैसे प्रचार किया जाए। तो उसने एक रामायण लिख दिया पढ़ा आदमी बंगला में और उसमें राम के द्वारा सीता जी की पूजा कर राम के द्वारा देवी जी की पूजा कराई। रामचंद्र जी लंका पर कौन से खटो बटो की पूजा वो कैसे कराए इसलिए रामायण ही लिख दिया पूरा। ये लोग यहाँ के अंधविश्वासी हैं राम की पूजा करते हैं तो हम जो कुछ लिख देंगे वो लोग मान लेंगे कहानी के लिए, इसलिए उन्होंने एक रामायण लिखा। उसमें जन्म इत्यादि कुछ तो ठीक लिखा और किसी ने अपनी बात सबराम के नाम पर उसने लिखी। उसमें लिखा जय रामचंद्र जी जब समुद्र को पार करने के लिए आए तो उन्होंने रामेश्वर की स्थापना करके और एक कमल के द्वारा एक सवार कमल के द्वारा रामेश्वर की पूजा करेंगे। तो वो पूजा करने ओम शिवाय नमः एक पुष्प ओम शिवाय नमः
देवी पूजा
मैंने सुनो तो देवी की पूजा कर रहे थे तो दुर्गा जी की पूजा करने लगते। तो करते करते 107 तक उनका पूरा आठवां फूल काली किसी ने चोरी कर लिया वो मिला नहीं और पूजा करने का समय भी चला जाएगा तो नहीं कमल कहाँ गया कोई पता नहीं चोरी चला गया। उन्होंने देखा कि लोग कहते हैं कि मेरी भी आंख कमल के समान है राजीव लोचन कमल लोचन राम कहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी एक आंख अपने बाण से निकाल लिया और लेकर के देने लगे तो देवी जी प्रकट हो गई कजय वर्मा। तो इसी पर उस समय से जब रामचंद्र जी पूजा किया तो हम लोग को जरूर करना चाहिए। तो होते 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 बंगाल भर में ये फैल गया और सभी लोग वैसे ही कर अभी काम करते हैं। किंतु ये पद्म पुराण में या श्रीमद् भागवत में रामचरित्र में वाल्मीकि रामायण में या किसी शास्त्र में ये सब बातें नहीं कपोल कल्पना की बात है। तो इस तरह से उन्होंने पूजा कर दिया और बंगाल लोगों पूजा आरंभ हो गया वो भी रामचंद्र जी के समय में और ये समय में नवदुर्गा का इस समय में दुर्गा जी का जन्म हुआ था न विवाह हुआ था न क्या हुआ था ये कुछ नहीं था। पूजा करें कोई बात नहीं है किंतु रामचंद्र जी के जन्म में या रामचंद्र जी के समय में आज के दिन में रामचंद्र जी बैठे हुए थे एक सेमल के पेड़ के नीचे किसकिन धाम। रामचंद्र जी से सीता का वियोग हो गया था सीता हरण हो गई और सुग्रीव में रामचंद्र जी में मित्रता हो गई। रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को बाली को मारकर लाल गंगा तुम्हें दे दूंगा और तुम हमारी स्त्री को खोज करके ले आए। तो उसने कहा कि पाताल में भी होगी सीता स्वर्ग में होगी मैं जहाँ से होगा सीता जी का पता लगा करके तुमको दे दूंगा। यदि तुम हमारी पत्नी को बाली हमारा भैया है वो बड़ा अत्याचारी हमको मारता हमारी स्त्री को भी ले लिया तुम उसको लो ये ठीक मित्रता थी। मित्रता होने के बाद में रामचंद्र जी ने चीत करके पेड़ की आग में बाली का वध किया। बाली के वध करने के बाद में बाली ने कहा, हमको आपने क्यों मारा? अरे यदि कहते आप सीता को ला लेने के लिए तो रावण को मैं पकड़ करके ले आता और सीता जी को लेकर के तुमको दिलवा देता। तो ये दर्पों का आदमी से जिसको बल नहीं है, तो गयों का तुमने आड़ क्यों किया? ये तो मैं सही करता, रावण को जैसा करता वो कर देता, तुमने ये गलत काम किया हमको। रामचंद्र जी ने कहा, जैसे तुमने अपने भाई की पत्नी के प्रति कुदृष्टि की इसलिए तुम तुम्हारा, किंतु पीछे से सुग्रीव भी तो वैसा ही किया, अपने भाई की पत्नी तारा को रख लिया। तो रामचंद्र जी इसका ठीक उत्तर नहीं दिए, जैसा भी हो। तो बाली ने बाली को उन्होंने मारा और प्रतीक्षा करने लगे। चार महीना का ये समय आ गया, वर्षा का समय, उस समय निकलना खोजना मुश्किल है। इसके बाद में सीता जी का पता लगा, पता लगाने के बाद में पता लग गया, हनुमान जी आए, बोले ये सीता जी लंका में। तो उनसे सुग्रीव जी से हनुमान जी से सब लोगों से मिलकर के आज के दिन शुभ था, सभी लग्न थे, इसमें विजय के सब लक्षण थे, इसलिए आज के दिन हुआ कि आज ही के दिन में यात्रा की जाए लंका के लिए। तो आज ही के दिन में चंदनी वृक्ष मतलब सेमल का उसी के नीचे वो बैठे थे वहां उस समय, इसलिए वहां से आज सब लोग मिलकर के अपने अपने अस्त्रों को लेकर के प्रस्थान किया। रामचंद्र सारी सेना के साथ में वो चले, कहाँ चले? शेतबांध रामेश्वर की तरफ में चले। अभी शेतबांध रामेश्वर नाम नहीं हुआ था, वहां से लंका निकट पड़ता है, वहीं पर पड़ाव के लिए। तो पहले दिन जहां से चले उसका नाम हुआ विजय दत्त। ये वाल्मीकि रामायण में और पुराणों में भी ऐसा लिखा गया। इसलिए आज लंका युद्ध के लिए यात्रा करने का दिन है, इसलिए हमारे यहाँ क्षत्रिय लोग जितने बड़े बड़े राजा होते थे आज के दिन अपने अस्त्र शस्त्र पर धारते देते और कहीं न कहीं शिकार खेलने के लिए भी जाते या परस्पर लड़ाई का स्वांग लगा करके परस्पर लड़ते थे, साधारण खेल खिला करते। इसलिए विजयादशमी रामचंद्र जी का रावण पर विजय करने के लिए यात्रा का ये शुरू। और भी जब हमें इसको लिखा गया उसमें कहा, रामचंद्र जी जिस समय में विभीषण आया था, इस बार अभी पुल नहीं बंधा था, विभीषण आया तो उस समय में सुग्रीव से पूछा, जे ये राम का भाई आ रहा है तो इसको शरण दूं कि नहीं दूं, और ये नहीं देना चाहिए, शत्रु का भाई कभी भी शत्रु का कोई सहायता नहीं करेगा, बल्कि वो पीछे से अपने भाई की तरफ में मिल जाएगा और हमारा भेद बतला देगा। किंतु जब हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने कहा, आप एक क्षण में लाखों कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं और उसका धन कर सकते हैं, इसलिए आपको शत्रु से क्या डर है, इसलिए आप उसको शरण दे दें, वो शरणागत है। रामचंद्र जी ने ऐसा शुरू करके और उसको शरण दिया और वही लंका विजय का कारण बना। जहां पर वो लिखा है वही सी जगह में ये लंका विजय के प्रसंग में ये सब बात है। देवी की पूजा की बातें कहीं भी नहीं लिखी, करते हैं वो करें किंतु ऐसी बात। उस प्रकार से रामचंद्र जी के जन्म के समय देवी नव दुर्गा कहलाता है, उसका भी कोई इसमें नहीं, इसी तरह से उनका कपूर कहलाता है। तो आज के दिन में रामचंद्र जी यहाँ से जाता है, कहते हैं इसका प्रणाम। दूसरी बात, आज के दिन में मथुराचार्य जी का जन्मदिन है। मथुराचार्य चारों संप्रदाय में से एक संप्रदाय के कलयुग में गुरु आचार्य हैं। आप लोगों के संबंध में विभिन्न ब्रह्मचारी लोगों से आप लोग सुन, जिस रास्ता को पकड़ करके सम्यक रूप से भगवत भक्ति को जो प्रदान करती है, जो धारा प्रदान करती है, उस धारा का नाम सम्यक रूप से प्रदान करती है, जो धारा जो परंपरा भगवत भक्ति को, जिससे कि सभी आदमी भगवान को पा सकता है, उस धारा का नाम संप्रदाय। इनको आज कल लोगों ने इसका अर्थ विकृत कर दिया है। संप्रदाय वो कहते हैं भूत मुख का अंधविश्वास लेकर के, चाहे वो ठीक हो और न ठीक हो, उसी के लिए लड़ मरते हैं, कट्टरपंथ को संप्रदाय समझते हैं। किंतु वैदिक रीति के अनुसार में हमारी भजन पूजन की दृष्टि से जो संप्रदाय है उनका बहुत ही लोग समझते हैं। तो भगवान की भक्ति देने के लिए चार संप्रदाय प्रारंभ होने लगे। एक ब्रह्मा जी का संप्रदाय, एक शंकर जी का संप्रदाय, एक लक्ष्मी जी का संप्रदाय और एक सनक सनंदन सनातन जी का। ये चार संप्रदाय की विचार है। रास्ता तो एक ही है भक्ति, किंतु किस दृष्टि से उपासना, कैसे हम उपासना करें, उस उपासनाओं में कुछ कुछ थोड़ा सा वैशिष्ट है। इन सभी उपासनाओं का एक बात यह है कि भगवान एक है, वो प्रभु है, जीव उनका दास है। ये एक इस सब में कॉमन है विचार, जो कृष्ण या राम ये प्रभु हैं और जीव उनका दास है। भक्ति के द्वारा श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाठ सेवन अर्चन इत्यादि के द्वारा भगवान की उपासना करने से वो मिलते हैं। जीवात्मा अजर अमर है, भगवान भी नित्य है। जीव भगवान में मिल नहीं सकता है, भगवान से मिल सकता है। जीव भगवान से मिलेगा किंतु भगवान में मिलेगा ऐसा नहीं। जीव मिलेंगे, मिलकर के भगवान से उनकी सेवा करेंगे, किंतु भगवान में मिलकर के भगवान नहीं हो जाते हैं। ये सब संप्रदाय का मिलकर इसलिए समस्त संप्रदाय में एक ही बात है, जो प्रभु भगवान है वो प्रभु है, हम दास हैं। भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पूजन इत्यादि करने से भगवान प्रसन्न होकर के अपनी भक्ति, ये सब संप्रदाय में एक ही है। भगवान सच्चिदानंद है, ये सब में भगवान में ही जगत की सृष्टि स्थिति और उत्पन्न है, ये सब इसमें। किंतु कोई राम की उपासना करते हैं, जैसे लक्ष्मी जी नारायण की उपासना करते हैं, और भगवान ऐश्वर्य सब भगवान से ऐश्वर्य भी ज्ञान वैराग्य नहीं किया, सब भगवान से युक्त होकर के वो भगवान। इनमें भगवान में ऐश्वर्य प्रधान है, वो नारायण है। उनमें ही थोड़ा सा वैशिष्ट के साथ में उन्हीं से फिर राम की उपासना। तो लक्ष्मी जी की जो उपासना है वह ऐश्वर्यमयी उपासना, उन्हीं से पीछे से रामानुजाचार्य कली काल में हुए और उनसे एक शाखा हुई, वो रामानुजी जिसमें तुलसीदास किया है। उसी प्रकार से एक संप्रदाय है ब्रह्मा जी का, जिसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी, सुषस्व गोस्वामी और उनसे मध्वाचार्य व्यास जी से, और मध्व से क्रमशः उस परंपरा में लक्ष्मी तीर्थ से माधवेन्द्रपुरी पार ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु एक था। मध्व और मध्व की शाखा ये गौड़ीय वैष्णव, इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। उसी तरह से सनक सनंदन सनातन एक संप्रदाय, ये अनादिकाल से इन्हीं में हुए निम्बादित्य और निम्बादित्य से पीछे से निम्बाद हुए सब। ये लोग रुक्मिणी और सप्तभामा की भांति कृष्ण से वैवाहिक जीवन करके उनकी उपासना करते थे, उनका रूप प्रचलित। पीछे से जब देखा ये ब्रज में राधा जी की सभी उपासना करते हैं, तो उन लोगों ने भी उनको बदल करके राधा जी की उपासना कर, जैसे बिहारी जी का, बिहारी जी माने द्वारकाधीश थे जैसे मथुरा के, पीछे से उनको बिहारी जी बना करके, ब्रजिका बना करके, उनके साथ में रुक्मिणी और सप्तभामा का नाम बदल करके राधा जी, ऐसे ही उपासना। और एक था रुद्र जी का, रुद्र कैसे उनकी आराधना करते हैं भगवान की, वही धीरे धीरे कलिकाल में विष्णु स्वामी ने, और विष्णु स्वामी ने इस प्रकार से, आजकल विष्णु स्वामी के संप्रदाय बहुत कम रेयर देखे जाते हैं, बहुत कम है। मथुरा में कुछ है, उससे ऊपर शाखा के रूप में बल्लभाचार्य, इनके दार्शनिक विचार भी अलग अलग कुछ हैं। मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु में ये विचारधारा, इसका नाम चैतन्य महाप्रभु की धारा में इसका अत्यंत भेद आ गया। मध्व संप्रदाय में अत्यंत भेद, पंच भेद, जीव और ईश्वर में भेद, जीव और जीव में भेद, जीव और जड़ में भेद, जड़ और ईश्वर, ये पंच भेद, ये नित्य है। हम लोगों का हुआ अचिंत भेद अभेद, भेद भी है अभेद, क्योंकि वेदों में उपनिषदों में ऐसा लिखा जाता है। श्री संप्रदाय में वैश्विक विशिष्ट अद्वैतवाद, एक अद्वैतवाद है किंतु उसमें विशेषता है, विशेषता और विशेषण। जैसे काली गाय, गाय है कैसी है, कोई काली है कोई सफेद, ऐसे ब्रह्म एक है, वह नारायण है, नारायण से ही सब विश्व की स्थिति प्रलय और ये सब होता है, किंतु उनमें दो विशेषण है, एक जीव और एक जगत। जीव जो है वो सुख शरीर के साथ खाती है, और जड़ जो है स्थूल जगत की है। जैसे हमारे शरीर में जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, स्थूल ये पांच भौतिक शरीर, ऐसे ही मूल जो नारायण तत्व हैं उनके ये जीव जो हैं वो परिकर हैं या बद्ध हैं, ये उनका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, ये जड़ जगत जो हम देखते हैं। किंतु है एक ही संसर्गत में, दो चीज इसमें नहीं है, जगत का सृष्टि करने वाला दूसरा कोई नहीं है, और जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता, इसलिए हुआ विशिष्ट अद्वैत। ठीक शंकराचार्य का अद्वैतवाद, अद्वैतवाद माने एक ही है, कभी उसी को जीव के रूप में देखते हैं, जगत के रूप में देखते, सर्वम फविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। किंतु इसमें बहुत सी बातें आती हैं जो खरी उतरती नहीं है युक्ति और शास्त्र के बल पर। सर्वम फविदम ब्रह्म, सभी कुछ ब्रह्म है, तो ये जगत मिथ्या कैसे हो गया, इसका उत्तर उन लोगों में नहीं। क्यों? यदि सभी ब्रह्म है तो सबको सत्य होना चाहिए, किंतु सत्य नहीं, सर्वम खलिदम, इसलिए वो ठीक नहीं जाना। इस बात किसी का है, उनका रुद्र स्वामी का शुद्ध शुद्धात्म है, वो निम्बादित्य का इनका है शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत माने क्या, ये जो दिख पड़ता है यह द्वैत जो है जो सभी एक है ये गलत है। शुद्ध रूप में ही कृष्ण है, राम है, जीव है, जगत है, उनके उपास्य है, उपासना है, ये शुद्ध रूप में ही है, ये उनकी शक्ति के विचित्रता के वजह से ये दिख पड़ता है। अद्वैत तो है ठीक है, शुद्ध अद्वैत, और मध्वाचार्य का है शुद्ध द्वैत, शुद्धा शुद्ध द्वैत, इनका है शुद्धाद्वैत, आकार इसमें नहीं है, शुद्ध अद्वैत मैंने अद्वैत है किंतु शुद्ध है, जीव और जगत है तभी यह अद्वैत ही है, एक ही है, एक से ही सब कुछ है, मूल में एक है, आम का पेड़ है उसमें फल है, आम है उसमें पत्ते हैं, उसमें डालियां, उसमें धड़, सभी एक है, दो नहीं है। यदि कोई कहता है जो पत्ती पेड़ डाल फल कच्चा आम पका आम ये सब अलग अलग चीज है, तो ये उसी प्रकार से भगवान भक्त भक्ति और ये समस्त विश्व मिलकर के एक शुद्ध रूप में, ये सब पर जगत में शुद्ध रूप में है, यहाँ पर अशुद्ध, यहाँ पर बद्ध जीव है, वहां पर मुक्ति जी, जो लक्ष्मी जी हैं, हनुमान जी हैं, ये उनकी जो सेवा करते हैं, शुद्ध एक ही में सब, इसलिए वह शुद्धा द्वैत। मध्वाचार्य का है शुद्ध द्वैत, पांच प्रकार के भाव है, ये सेवक कभी भी शब्द नहीं हो सकता है। और रह गया उनका निम्बादित्य का, उनका विचार है स्वाभाविक द्वैताद्वैत, स्वाभाविक हम लोगों का है अचिंत्य, उनका है स्वाभाविक, किसी का है और भी बहुत पहले ऋषि लोग हो गए हैं जो वेदांत के भाष्य बनाए हैं, भिक्षु विज्ञान भिक्षु इत्यादि ने लिखा है, उनका है द्वैता और भेदाभेद आभास का उन्होंने किया प्रतिबिंब, और उनका है स्वाभावी और हम लोग का है चिंतन। तो स्वाभाविक में और इसमें क्या अंतर है, उनका भी भेदाभेद है, हमारा भी भेदाभेद है, महाप्रभु का भी विचार, इसमें भेद यह है साधारण आदमी नहीं समझ पाते। उन्होंने कहा जैसे वस्तु के ही परिणाम है, वो वस्तु से ही जो कृष्ण के जितने अवतार हैं वो वस्तु से निकले, जीव भी वस्तु से ही निकला है, वस्तु का परिणाम है, और ये जो जड़ जगत जो दिखा गया था वो भी वस्तु का परिणाम है, इसलिए वस्तु से ये सब निकले हैं, स्वाभाविक रूप में निकले हैं। किंतु हमारे आचार्य ने इसको इस रूप में ग्रहण नहीं किया, कार्य से यदि उनसे निकला है तो वस्तु को भी परिणामवादी कहा जाएगा, तो उसका भी परिणाम होता है, तो भगवान में भी परिणाम हो गया था, तो ये गलत हो गया, इसलिए यह बात की। शंकराचार्य ने इस विचार का खंडन किया है, हमारे जीव गोस्वामी ने भी खंडन किया। स्वजातीय सतत स्वजातीय विजातीय भेद उस वस्तु में नहीं है, जीव के साथ में स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद इसमें किसी में भी नहीं है, या जड़ के साथ में भगवान का संबंध जब विचार कर रहे हैं ये सब चीजें उसमें नहीं आती। राम के साथ में राम और कृष्ण में स्वगत भेद नहीं है, वस्तु एक ही है, वैशिष्ट है, भेद की प्रतीति कराता है। इसलिए वो सब चीजें ठीक नहीं है। स्वाभाविक रूप में जो परिणाम है भगवान का यह ठीक नहीं है। जीव गोस्वामी ने इस विचार का खंडन किया और उन्होंने कहा अचिंत प्रत्येक वस्तु में कोई अचिंत शक्ति होती है। यहाँ पर भेद और भेद किस चीज में है? वस्तु और वस्तु की शक्ति में। संसार से कृष्ण का भेद अभेद नहीं या जीव के साथ में भगवान का भेद अभेद नहीं, बल्कि शक्ति और शक्ति का मान में परस्पर भेद और भेद होता है। प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई जरूर शक्ति है। जैसे वो जिसको खाने से आदमी मर जाता है धतूरा धतूरा है ना, उसमें क्यों वो विष हुआ जिसको खाने से आदमी मर जाता है? विष खाने से आदमी क्यों मरता है? क्या करने या मरता है? बर्फ ठंडा क्यों होता है? क्यों हुआ? हवा बनती है कैसे? ऑक्सीजन वो नाइट्रोजन और क्या
हाइड्रोजन
मिलकर के क्यों मिलने से मिलता है? क्यों हवा उससे क्यों होता है? क्यों पानी बन जाता है? आग गर्म क्यों है? वो जलाती क्यों है? हवा ये कैसे बन गई? प्रत्येक शक्ति में ही ऐसा अचिंत भाव है। इसका कारण नहीं बतला सकते। दूध पीने से पुष्टि होती है और बीज खाने से आदमी मर जाएगा, क्यों? उसमें शक्ति कहां से आए? आदमी क्यों सोता है? क्यों सोता है? जीव तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, सुना अज्ञानता, ये कैसे हो गया? जीव को माया ने कैसे पकड़ लिया? ये तो चिन्मय वस्तु है, चित्त वस्तु, वो कैसे हो गया? इसका कोई भी उत्तर नहीं, सब अचिंत चीज है। आप क्यों जला रहे हैं? वो लोग कहेंगे ये तीन कारणों से जला रहे हैं। और ये वो कारण क्यों हुआ? अंत में कारण का कारण ढूंढते 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 अंत में आएगा कहां? वही ब्रह्म आएगा। ब्रह्म ही सबका कारण है। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी का अचिंत, इसकी चिंता नहीं की जाती। चिंता नहीं की जाती है तो सुन करके कैसे होता है? कहां से आपको मालूम होगा? नहीं, वेद बुद्धि गम्य है। वेद भगवान के द्वारा प्रकाशित है, इसलिए भगवान कहते हैं कि इस बात को मानना पड़ेगा। अथवा हमारी गुरु परंपरा की धारा में ये चीजें लिखी गई हैं, इसलिए ये सब है। इसलिए गुरु परंपरा की बुद्धि से जाना जाएगा या शास्त्रों के माध्यम से जाना जाएगा, इसको कहते हैं अचिंत। कभी जाना ही नहीं जाएगा अचिंत, कभी चिंता ही नहीं की जा सकती, यह अचिंत का लक्षण नहीं है। इसलिए ये सब विचार हैं, भक्ति के विचार हैं। उसका एक दार्शनिक पहलू है और एक उपासना की पहलू है। इसलिए इनमें थोड़ा सा भेद दिखता है, किंतु भेद नहीं है, ये सब वही चीज है। इन चारों में कोई अंतर नहीं है, चारों एक होता रहे भी इनमें कुछ कुछ उपासना का। रामानुज से हमारे गौड़ीय वैष्णव का भेद क्या है? हम लोग का केवल माधुर्य की उपासना होती है, भगवत्ता का सार माधुर्य है, ऐश्वर्य नहीं है। नरबपू नरबपू का स्वरूप है, जतो खेला तार मध्य
सर्वोत्तम
नरबपू उनका शरीर है और हाथ में बेनु और
नवकिशोर
नटवर बेनु हाथ में, यही समस्त भगवत्ता का सार है। देखने में छोटे से किंतु यही सर्वोत्तम है। इन दोनों में या सब में यही कुछ कुछ थोड़ा सा भेद जैसा दिखता है, किंतु भेद नहीं। आज मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ था, आज ही के दिन में हम लोगों के विचार से कब
कल शुद्ध हम लोग कोई भी विचार तारीख से नहीं करते, हम लोग तिथि से करते हैं, तिथि से गणना होती है। हमारे यहाँ तिथियां प्रधान मानी गई, इसलिए जिस तिथि जो जिस दिन में शुद्ध रहेगी उस तिथि के अनुसार में उनका जन्म मानते हैं, या कोई भी चीज उपवास इत्यादि भी तिथि के अनुसार में होता है। अंग्रेजी कैलेंडर में वो डेट तारीख प्रधान होती है, हम लोग के यहाँ वो सूर्य की गणना से होती है, और ये होती है चंद्र गणना से, चंद्र की तिथियां होती हैं, इसके अनुसार में घटती बढ़ती रहती है। एक दिन में तीन तिथि भी आ सकती है और एक तिथि में तीन दिन भी हो सकते हैं, उसी को हम तो इस तरह से हम लोग कल मानेंगे। मध्वाचार्य का जो तो भी आज कुछ लोग मान रहे, इसलिए हम लोगों ने इसके संबंध में कुछ किया। मध्वाचार्य के संबंध में ब्रह्मचारी लोग कुछ बोलेंगे, आप लोग सुनिए, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा?
কাল তৈরি হয়েছে, আমরা আজকে বিজয়াদশমী মানাব। কালকে বিজয়াদশমী সম্বন্ধে বলেছিলাম, বিজয়াদশমী সম্বন্ধে দেবীর কোনো সম্বন্ধ নেই। বিজয়াদশমী ভগবান রামচন্দ্র হনুমানের নিকটেতে এটা খবর পেলেন, সংবাদ পেলেন যে তিনি লঙ্কাতে আছেন, ও লঙ্কা মে হ্যাঁ, এসলিয়ে সুগ্রীব সে বান্দরী সেনা কো লেকর সমস্ত বান্দরী সেনাগণ কে লিয়ে সেখানে থেকে হিন্দি বেশি না বাংলা, হিন্দি বললে চলবে তো। আজ সে চৈত মহিনা কতনা দিন পড়তা
হ্যাঁ, 180 দিন পুরা হতো মহিনা,
লেকিন 150 দিন ইতনা দিন তক আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ আর ফাল্গুন, ये छह महीना रामचंद्र जी कहाँ थे युद्ध जय करने के बाद में? वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा पाया जाता है, ये रकम देखा जाए रावण के मेरे दिए द्वितीय ने सीता आस लें अग्नि से प्रवेश कर लें, तापर तनी राज्याभिषेक लखन के द्वारा दिलाई लें विभीषण के, और तात्पर्य दिन थे दो तीन दिन मध्य तनी वो खंती के चले आते, उस पर भी माने तो एमन भावे चल रहे जो मनर गति थे एक दिन से चित्रकूट चले आते, चित्रकूट ना वही नंदीग्राम में चित्त चले आते एक दिन लगा, अरे अत दिन चार पांच मास कुछ छिले तो एक दिन ना तिनी रावण के मरण नहीं तथापि लीला देखानो है तो कोनो आपत्ति नहीं, किंतु रावण के मरे छिले ফাল্গুন মাসে শেষের দিকে, আর চৈত্র মাসে নবমীতে তিনি ফিরেছিলেন, নবী কুড়ি দিন আগেই আর ওনার রাজ্যাভিষেক হয়েছিল রামচন্দ্রের। রামনবমীতে নবমীতে তাহার জন্ম চৈত্র মাসে, নবমীতে তাহার বনবাস, আর নবমীতে তাহার ফিরে এসে রাজ্যাভিষেক, এই তিনটা একই তিথিতে হয়েছে, এটা সমস্ত রামায়ণ ইত্যাদিতে দেখায়। আর আজকে একটি বিশেষ দিন আমাদের সম্প্রদায়ের, প্রাচীন কাল থেকে এটা আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের লোক গ্রহণ করছে, যে আমাদের সম্প্রদায়ের কলিযুগের প্রধান গুরু মধ্বাচার্যের আজকে হচ্ছে আবির্ভাব দিবস। আমাদের সব ক্যালেন্ডারগুলিতে এইরকম দেওয়া হয়। আজকাল আরবা চীন কতগুলি লোক, আজকালকে আরবা চীন লোক মানে নয় জিনক জ্ঞান নেই হ্যাঁ, ক্ষুদ্র জ্ঞান বালে লোক তারা বলছেন যে সে মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ভক্তি বর্ণ ঠাকুর স্পষ্ট সুরেতে বলছেন, যারা তারা কলির চ, যারা মধ্বাচার্যকে মানে না, যারা জীব গোস্বামীকে মানে না, যারা কবি কুরুণপুরুকে মানে না, যারা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকে মানে না, যারা বলদেব বিদ্যাভূষণকে মানে না, যারা ভক্তি বিনোদ ঠাকুরকে মানে না, তারা সব কলির চরিতা ঠিক। এই সব তথ্য, এসব তথ্য সবচেয়ে পহলে কবি কুরুণপুর স্পষ্ট ভাষা মে ইয়ে বতলায়, গুরু পরম্পরা কা উল্লেখ কিয়া কবি কর্ণপুর। জীব গোস্বামী সে ইয়ে উমর মে বড়ে হ্যাঁ, ক্যোকি চৈতন্য মহাপ্রভু জি কে চরণো কা অঙ্গুঠা পি করকে কবি কর্ণপুর কো কাব্য কি স্ফূর্তি হুই। ইয়ে মৌন বালক থে, ইনি মৌন বালক ছিলেন, চার পাঁচ বর্ষ কে হো গে থে। তিনকে পিতাজি ভবানন্দ,
শিবানন্দ
সেন, তাকে কোলে সেন নিয়ে গিয়েছিলেন, উনকো গোদি মে লে গে, আর মহাপ্রভুজি কে চরণ মে ইনকো ছোড় দিয়া। তো ইয়ে মহাপ্রভুজি কা অঙ্গুঠা, পায়ের কা অঙ্গুঠা লেকর কে মুখ মে লগা দিয়া, আর লগানে কে বাদ মে কাব্য কি স্ফূর্তি হুই এসি, যে উসি উমর মে বহুত হি সরস কিন্তু ক্লিষ্ট শ্লোক উনহোনে কাহা, চৈতন্য মহাপ্রভু জি কি প্রশস্তি মে উনহোনে লিখা, যে বড়ে বড়ে ধুরন্ধর কাব্য বালোঁ কে লিয়ে ইয়ে অসম্ভব থা, অসম্ভব ছিল। তো তিনি পরবর্তীকালেতে বৃন্দাবন চম্পু, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু আর চৈতন্য চরিতামৃত, চরিত কাব্য এবং আরো অনেক সব গ্রন্থ, নাটক ইত্যাদি বহু সমস্ত গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। তিনি আমাদের গুরু পরম্পরা তিনি লিখেছেন, কৃষ্ণ ব্রহ্মর্ষি দেবান দেবকানি, ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মা সে হলো কা সম্প্রদায়, তো ব্রহ্মাজি হমারে আদি গুরু, আর ব্রহ্মাজি কে বাদ মে নারদজি ব্যাসজি, ব্যাস কে বাদ কিসকো লিয়া, সুখদেব গোস্বামী জি কো নেই লিয়া, কিসকো লিয়া, মধ্বাচার্য কো লিয়া, কেউ নেই সুখদেব গোস্বামী কো লিয়া, গোস্বামী ইয়ে সুখদেব গোস্বামী জি ইয়ে থে অবধূত, একদম অবধূত। ইয়ে সব চিজে সে বহু উপর থে, ইয়ে অদ্ভুত সে ভি বড়ে থে ব্যাস জি নারদ জি, তবে এক ধারা কো লেকর কে পরম্পরা কো লেকর কে চলে। ইনহোনে ভাগবত কা শ্রবণ কিয়া আর ভাগবত কা প্রকাশ কিয়া সুখদেব গোস্বামী, কিন্তু ইয়ে পরমহংস হোনে কে নাতে কিছু খাস বিচারধারা মে নহি আয়ে, ইসলিয়ে হম লোককে আচার্য নে ইয়ে উনকো গুরু মানা, আচার্য মানা, মুক্ত মহাপুরুষ মানা, রসিক বৈষ্ণব মানা, ভাগবত মানা, কিন্তু গুরু পরম্পরা কি ধারা মে উনকো ন লে করকে, কিন্তু উনহোনে কোই শিষ্য ভি নহি কিয়া, জগত এসে হি উনকো আপনা শিষ্য সমান। সুত গোস্বামী কো উনহোনে মন্ত্র জেসে আর দীক্ষা জেসে হম লোক দেতে হ্যাঁ এসা নেই, আর সুখদেব গোস্বামী কো ভি ব্যাস জি নে কোই মন্ত্র আর দীক্ষা দে করকে নহি, শ্রীমদ ভাগবত উনকে হৃদয় মে প্রকাশ করকে সুনা করকে উনকো মহাভাগবত মানায়া থা ইস পরম্পরা মে। কিন্তু মধ্বাচার্য জি বদ্রিকাশ্রম মে গে আর আপনা বেদান্ত সময় তপ অনুভাষ্য বনা করকে গে আর লে যা করকে আর উহা পর ব্যাস জি কে চরণ মে, ব্যাস যাহা পর ব্যাস গদ্দি আর ক্যা কহতে হ্যাঁ व्यास घेरा या व्यास गद्दी वहां पर लेकर के और उनके चरणों में समर्पित कर दिया। व्यास जी ने प्रशस्त होकर के उसको ग्रहण किया और उनको बहुत आशीर्वाद दिया और उनको देखो कुकुर आश्चर्य कुकुर एक जन जाओ उन्होंने कहा जैसे ये तुम्हारा भाष्य वेदांत का बहुत ही सुंदर हुआ है और हमारे मन के अनुकूल भी है। शंकराचार्य जी का भाष्य हमारे मन के अनुकूल नहीं था, वो सामयिक था, तात्कालिक था, सामयिक। उस समय में बद्धों को भारत वर्ष से हटाना था, इसलिए एक ब्रह्म की स्वीकार की आवश्यकता थी, इसलिए एक निर्विशेष ब्रह्म की उन्होंने स्थापना जो कि उस समय के लिए उपयुक्त था, किंतु यथार्थ सर्वांग वेदांत का भाष्य वो नहीं है, किंतु तुम्हारा बहुत कुछ अच्छा हुआ है। उन्होंने गीता श्रीमद् भागवत का भी भाष्य किया है, उस भाष्य में अपना कोई भी मंतव्य नहीं दिया, बल्कि वेदों से उपनिषदों से पुराणों से लेकर केवल ये श्लोक दे दिए हैं जो उनके अनुकूल था। बहुत उनकी मेमोरी थी, जितने भी आचार्य हो गए हैं रामानुज मध्वर शंकर विष्णु सा इनमें इनकी मेमोरी सबसे अधिक थी मध्वाचार्य की। इन्होंने सब कोटेशन सब शास्त्रों के प्रमाण केवल प्रमाण दिए।